ओम शांति, ओम शांति। कल से हम सब बाबा के बच्चे, बाबा के साथ साथ अपनी अति प्यारी दादी जी की स्नेह भरी यादों का अनुभव कर रहे हैं। दादी जी तो वतन में एक चमकते हुए रतन की तरह वतन की शोभा को तो बढ़ा ही रही हैं, लेकिन वो वाइब्रेशन हम सबके पास पहुंच रहे हैं। तो आज कल से आप सभी ये सारा कार्यक्रम लाइव देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। मन के अंदर ना जाने कितनी भावनाएं पैदा हो रही हैं, कैसे हम उनका रिटर्न करें। बाबा ने ऐसे रतन हमारे सामने रखे जो कदम कदम पर हमें प्रेरणा देते रहे हैं। अब बाबा उनसे कोई विशेष कार्य कराने जा रहे हैं तो बाबा के पास दादी जी बैठी हैं, तो आज उनके भौतिक शरीर को आज का कार्यक्रम किस प्रकार से रहेगा वो बता रहे हैं। प्रातः 8 बजे शांतिवन से उनके भौतिक शरीर को ले जाएंगे ज्ञान सरोवर। 8 बजे शांतिवन से चलेंगे और 9 बजे तक ज्ञान सरोवर पहुंचेंगे। ज्ञान सरोवर में वहां के सभी भाई बहने दादी जी को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद ग्लोबल हॉस्पिटल में लाएंगे और ग्लोबल हॉस्पिटल के बाद 10 बजे तक पांडव भवन में चारों धाम की यात्रा के लिए लाएंगे। और किस प्रकार से सिस्टम रहेगा और ला करके उन्हें पहले हिस्ट्री हॉल में रखा जाएगा और हर एक बहन या भाई सभी को मौका मिलेगा श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। कोई भी आगे नहीं दौड़ेगा, कोई भी आवाज नहीं करेगा, वातावरण अव्यक्त बना के रखेंगे। और मुरली क्लास के बाद फिर से आपको बताएंगे कि सिस्टम से कैसे ये कार्यक्रम रहेगा, ताकि दादियों ने जो हमें बताया, बाबा ने जो सिखाया है, वो हम कार्यक्रम उसी प्रकार से सुंदर, सफल से सफल और मन की भावनाओं को हम ऐसा प्रकट करें जो कि बाबा और दादियों की सारे विश्व के अंदर प्रत्यक्षता हो। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 9 अप्रैल 2025। आज की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बातें बताई हैं। बाबा ने कहा, देखो प्रदर्शनी आदि में समझाते, और जब समझाते हैं तो क्या क्या बातें सुनाते हैं। बाबा ने पक्का कराया कि जब तक बाप का परिचय नहीं बताते हैं, जब तक उसको बाप के परिचय का अनुभव नहीं है, तब तक बाबा हमेशा कहते थे कि उसको दूसरे चित्र पर मत ले जाओ। कभी कभी इतना ज्ञान दे देते हैं और बाबा को लिखेंगे, बाबा इसको बहुत अच्छा लगा, और उसका ओपिनियन लिख करके बाबा के पास भेजते थे तो बाबा कहते कुछ नहीं समझा। फिर बाबा कहते थे बच्चों ने क्या किया, टिक टिक किया, टिक टिक मीन्स और बातें सुना दी हैं, लेकिन जो बाप का परिचय देना है वो नहीं दिया। दूसरा बाबा ने कहा, कई बच्चे जो हैं वो ज्ञान में बहुत होशियार हैं, लेकिन योग की कमी है। तो ज्ञान के साथ योग चाहिए, योग से ही स्कॉलरशिप मिलेगी। फिर बाबा ने कहा कि स्कॉलरशिप लेने वाले बच्चों की क्या क्या निशानियां होंगी वो भी बाबा ने बताया है। और बाबा ने विशेष कहा है कि साइलेंस का अभ्यास तो सही, लेकिन बच्चे जो भी सेवा करते हैं पहले उनको बाप का परिचय देना है। तो अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 9 अप्रैल 2025। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे हर एक की नब्ज देख पहले उसे अलफ का निश्चय करो। मीठे बच्चे हर एक की नब्ज देख पहले उसे अलफ का निश्चय कराओ, फिर आगे बढ़ो। अलफ की निश्चय बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना। बाबा कहते उसे पहचाना ही है बाबा को, आप उनको ज्ञान इतना देते जाते हैं तो बाबा कहते ये क्या है, टाइम वेस्ट करना है। अलग की निश्चय बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है। आज का प्रश्न है, कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है? कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है? इसका उत्तर है अंतर्मुखता का। कितनी बड़ी बात है कि अंतर्मुखी रहना का है, अंतर्मुखता का। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी हो रहना है। बाप तो है ही कल्याणकारी, कल्याण के लिए ही राय देते। बाबा क्यों बताते हैं, क्योंकि जितना अंतर्मुखी रहेंगे उतना ही कल्याण होगा। तो बाबा कहते कल्याण के लिए ही राय देते हैं। जो अंतर्मुखी योगी बच्चे हैं वे कभी भी देह अभिमान में आकर रोसते व लड़ते नहीं। अंतर्मुखी की निशानी योगी बच्चे कभी भी देह अभिमान में आकर के लड़ेंगे नहीं, रूसेंगे नहीं। छोटी छोटी बात पे रूस जाते ना, छोटी छोटी बात पे आर्ग्यू करते हैं। तो बाबा कहते हैं जो अंतर्मुखी योगी बच्चे हैं वे कभी भी देह अभिमान में आकर रूसते व लड़ते नहीं हैं। उनकी चलन बड़ी रॉयल और शानदार होती है, बहुत थोड़ा बोलते हैं, यज्ञ सर्विस में रुचि रखते हैं। कितनी बातें बाबा ने बताई, फिर से रिपीट करती एक एक बात। पहली है वह कभी भी देह अभिमान में आकर रोसते व लड़ते नहीं है। दूसरा, उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार होती है। तीसरा, बहुत थोड़ा बोलते हैं। चौथा, यज्ञ सर्विस में रुचि रखते हैं। पांचवा, वे ज्ञान की यादा टिक टिक नहीं करते। टिक टिक समझते हैं, बहुत ज्यादा ज्ञान सुनाना, ओवर ज्ञान सुनाना। वे ज्ञान की यादा टिक टिक नहीं करते हैं। छठा है, याद में रहकर सर्विस करते हैं। ओम शांति। अक्सर करके देखा जाता है कि प्रदर्शनी सर्विस के समाचार भी आते हैं। बाबा के टाइम पर प्रदर्शनियां लगती थी, उस समय तो प्रदर्शनी ही सेवा का मेन साधन था। तो बाबा के पास समाचार भेजते थे, बाबा समाचार के बाद रिजल्ट भी बताते थे। तो आज बाबा रिजल्ट क्या बता रहे हैं। अक्सर करके देखा जाता है प्रदर्शनी सर्विस के समाचार भी आते हैं। तो मूल बात जो बाप की पहचान है उस पर पूरा निश्चय न बिठाने से जो कुछ भी समझाते वह ऐसे ही समझाते हैं। पहले कोई की बुद्धि में बैठना मुश्किल है। कौन सी बात, कि बाप की पहचान, बाबा ही मेरा पिता है, ये बुद्धि में कम बैठता है। बल अच्छा अच्छा कहते हैं परंतु बाप की पहचान नहीं है। पहले तो बाप की पहचान हो। बाबा को पत्र लिखते थे, बाबा फुलाना जिज्ञासु आया, वीआईपी आया, बहुत खुश हुआ, उसको बहुत अच्छा लगा, उसने ओपिनियन लिख के दिया बाबा के पास। जैसे ओपिनियन भेजते थे बाबा कहते थे इसको साइड में रख दो। उसने कुछ भी नहीं समझा, ये नहीं समझा कि परमात्मा मेरा पिता है, तो बाकी क्या समझा। तो बाबा कहते हैं बल अच्छा अच्छा कहते हैं परंतु बाप की पहचान नहीं। पहले तो बाप की पहचान हो। बाप के महावाक्य हैं, मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। मुझे याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। ये है मुख्य बात, भगवान एक है, वही पतित पावन है। ज्ञान का सागर है सुख का सागर। बाबा की महिमा क्या, भगवान एक है, वही पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, वही ऊंचते ऊंच है। ये निश्चय हो जाए, ये निश्चय हो जाए तो फिर भक्ति मार्ग के शास्त्र वेद आदि गीता ये सब खंडन हो जाए। क्या खंडन का मतलब कि परमात्मा को कैसे पा सकते हैं, बाबा एक है उसको कैसे पाने का रास्ता है, उनसे तो नहीं मिलता, वो तो वैसे गायन करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये अगर निश्चय हो जाए तो फिर भक्ति मार्ग के जो भी शास्त्र वेद अथवा गीता है भागवत है सब खंडन हो जाए। भगवान तो खुद कहते हैं ये मैंने सुनाया ही नहीं, भगवान बैठ के शास्त्रों ने सुनाए, शास्त्र तो लिखे गए हैं, तो भगवान खुद कहते हैं मैंने ये सुनाया नहीं है, मूल ज्ञान शास्त्रों में नहीं है, ये सब है भक्ति मार्ग का ज्ञान। मैं तो ज्ञान दे सदगति करके चला जाता हूँ। बाबा क्या बताते, मैं आता हूँ ज्ञान देता हूँ सदगति करता हूँ फिर चला जाता हूँ, फिर ये ज्ञान प्रायोगिक हो जाता है। ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होने के बाद फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। जब बाघ का निश्चय बैठे तो समझे भगवानो माचे ये भक्ति मार्ग के शास्त्र है। ज्ञान और भक्ति आधा आधा कलप चलती है। भगवान जब आते हैं तो अपना परिचय देते हैं। मैं कहता हूँ कि 5000 वर्ष कल्प, मैं कहता हूँ 5000 वर्ष का कल्प है। बाबा क्या कहते, मैं कौन, पहले अपना परिचय देता हूँ फिर सृष्टि चक्र का ज्ञान देता हूँ कि ये 5000 वर्ष का कल्प वृक्ष है। बाबा कहते हैं मैं तो ब्रह्म मुख से समझा रहा हूँ, तो पहले मुख्य बात बुद्धि में बिठानी है कि भगवान कौन है। यह बात जब तक बुद्धि में नहीं बैठी है तब तक और कुछ भी समझाने से कुछ असर नहीं होगा। बाबा कभी कभी कहते थे भगवान बाबा के चित्र पर चाहे आधा घंटा लग जाए, वहां पर पहले समझाओ, उससे आगे बढ़ना नहीं चाहिए। बाबा कहते जब तक ये बात बुद्धि में नहीं बैठी है तो दूसरी बातें भी बुद्धि में नहीं बैठ सकती है, तो कुछ भी असर नहीं होगा। सारी मेहनत ही इस बात में है। बाप आते ही हैं किस लिए, कब्र से जगाने। कहते ना कब्र में पड़े हुए थे, भगवान आया उसने जगाया, तो बाबा कहते बाप आते हैं कब्र से जगाने। शास्त्र आदि पढ़ने से तो जागेंगे नहीं, परम आत्मा है ज्योति स्वरूप, तो उनके बच्चे भी ज्योति स्वरूप हैं, परंतु तुम बच्चों की आत्मा पतित बनी हुई है जिस कारण ज्योति बुझ गई है, तमो प्रधान हो गए हैं। पहले पहले बाप का परिचय न देने से जो भी मेहनत आदि करते हैं, ओपिनियन आदि लिखवाते हैं, वे किसी भी काम करे। हाँ बाबा कितना सर्टिफिकेट दे रहे, पहले पहले बाप का परिचय न देने से फिर जो भी मेहनत करते हैं, ओपिनियन आदि लिखवाते हैं, वे कुछ भी काम का नहीं रहता, इसलिए सर्विस नहीं होती है। निश्चय हो तो समझे बरोबर ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दे रहे हैं। मनुष्य तो ब्रह्मा को देख कितना मूंझते, शुरू शुरू में जब ब्रह्मा बाबा के चित्र को देखते थे बहुत आर्ग्यू करते थे, बिल्कुल नहीं सुनने को तैयार होते थे। अभी तो प्यार से सुनते हैं, प्यार से देखते भी हैं, उनको कुछ प्राप्ति भी होती है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य तो ब्रह्मा को देख कितना मूंझते हैं, क्योंकि बाप की पहचान नहीं। अब दो बातें बाबा ने बोली, क्यों ब्रह्मा को देख के मूंझते, क्योंकि उनको बाबा का पूरा परिचय नहीं दिया है कि शिव बाबा कैसे आकर ज्ञान देते हैं, ब्रह्मा के तन में देते हैं, तो इसलिए बाबा कहते वो मूंझते हैं ब्रह्मा को देखकर, क्योंकि बाप की पहचान नहीं है। तो तुम जानते हो भक्ति मार्ग अब पास हो गया, कलयुग में है भक्ति मार्ग और अब संगम पर है ज्ञान मार्ग। हम संगम युगी हैं, राजयोग सीख रहे हैं, दैवी गुण धारण करते हैं नई दुनिया के लिए। जो संगम युग पर नहीं वे दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं उस तरफ। अब एक बहुत राजयुक्त बात बाबा बता रहे हैं, उस तरफ तमो प्रधानता बढ़ती जाती है और इस तरफ तुम्हारा संगम युग पूरा होता जाता कनेक्शन। एक तरफ तमो प्रधानता का बढ़ावा हो रहा है, बढ़ता जाता है, और दूसरी तरफ संगम युग का कार्य जो है संपन्न होता जाता है। तो बाबा क्या कहते हैं, उस तरफ तमो प्रधानता बढ़ती जाती है, इस तरफ तुम्हारा संगम युग पूरा होता जा रहा है। ये सब समझने की बातें है ना, समझाने वाले भी नंबर वन है। बाबा रोज पुरुषार्थ कराते, बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि वैजयंती। बच्चों में टिक टिक करने की आदत बहुत है, टिक टिक समझते ना, बहुत ज्यादा सुनाना। अभी कई बार हम देखते हैं कोई ज्ञान सुनाते ना, जोर जोर से हाथ ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमा घुमा के, अरे रॉयल्टी से समझाओ ना, फिर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के ज्ञान सुनाते, उसकी बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं है। जब जिसकी बुद्धि में बैठना होगा, रॉयल्टी से बोलो, थोड़ा बोलो, कोई मुख्य पॉइंट सुनाओ, बाबा का परिचय अच्छी तरह से दो। तो बाबा कहते टिक टिक है कि टिक टिक मीन्स ऐसी बातें सुना दी, इधर की बात सुनाई, उधर की बात सुनाई, उसको बाबा कहते खुश तो बहुत हो जाएगा, महिमा करेगा कि इस भाई ने बहुत अच्छा सुनाया। लेकिन क्या सुनाया, बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा बोलता है, अरे बोला क्या वो पता नहीं है, सुनाया बहुत अच्छा है। तो बाबा कहते इस बात का ध्यान रखना है, खास करके यहाँ समझाते हैं ना, हमारे भाई बहुत अच्छा समझाते हैं, तो आज भी बाबा पक्का करा रहे हैं कि बाबा का परिचय जरूर देना है। बच्चों में टिक टिक करने की आदत बहुत है, बाप को याद करते ही नहीं है, याद करना बड़ा कठिन है, बाप को याद करना छोड़ अपनी टिक टिक करते। बाबा के पास रिजल्ट रहती ना, बाबा को याद करने की बजाय ज्ञान की पता नहीं कहाँ कहाँ से बातें सुनाते, तो पता नहीं आजकल क्या क्या करते हैं, ज्ञान की भी बात को लेकर के उसको पता नहीं कितनी उलझने पैदा करते हैं, ये होगा वो होगा, सचियों में ऐसे बच्चे पैदा हो गए, अरे तुम लोगों को क्या पड़ा ये सब बातों में, पहले अपना तो कोई शारत कर लो ना। तो बाबा की ये सब बातें जो है ना, वो टिक टिक की बातें हैं, उसका कैसे संगम पूरा होगा, पता नहीं क्या क्या बातें लिखते रहते हैं। तो बाबा कहते इन बातों को कभी नहीं सुनना। हमें बाबा की बात याद आती थी, बाबा से बच्चे पूछते थे, दादियां पूछती थी, बाबा डेट तो बता दो विनाश की। बाबा ने कहा आपको क्या करना, संपन्नता की डेट बताओ। बाबा ने कहा पहले बनो तो सही। अभी आजकल कोई ज्ञान की एक बात को लेकर के श्री कृष्ण का जन्म कैसे होगा, उनके माता पिता कैसे होंगे, उनका क्या होगा, ये बातें न सुननी है, न उस पर ध्यान देना है, बुद्धि उस तरफ चली जाएगी। तो बाबा कहते जो बाबा ने कहा है अपने को संपन्न बनाओ, पावन बनाओ, वो ध्यान रखना है। तो ये बातों पर थोड़ा सा अपने को सेफ रखना बहुत जरूरी है। तो बाबा कहते हैं योग बिगड़ अपने टिक टिक सुनाते रहते हैं, बाप के निश्चय बिगड़ और चित्रों की तरफ बढ़ना ही नहीं चाहिए। बाबा कहते जब तक बाप पे निश्चय नहीं हुआ तो दूसरे चित्रों को बढ़ना नहीं चाहिए, निश्चय नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं। हमने देखा दादियों का कि दादियों ने केवल बाबा बाबा ने जो सुनाया, आज उनके कारण ही, बाबा ने जो बताया उसी श्रीमद पर चलने के कारण आज उनकी स्टेज इतनी हाई है, इतनी परफेक्ट है, जो कि किसी की नहीं हो सकती है। तो बाबा कहते जो बाबा सुनाते हैं उस पर ध्यान देना है, निश्चय नहीं तो कुछ भी समझते नहीं, अलफ का निश्चय नहीं तो बाकी बे में जाना टाइम वेस्ट करना है, किसकी नवस को जानते ही नहीं है। अब ओपनिंग करने वाले को भी पहले बाप का परिचय देना, पहले पहले बाबा हमेशा बताते थे कि ओपनिंग के लिए जिसको बुलाते उसको बताओ किसकी ओपनिंग करने आ रही, क्या कार्य चल रहा है, तो उसको परिचय होना चाहिए। ओपनिंग करने वाले को भी पहले बाप का परिचय देना है। वह है ऊंचते ऊंच बाप, ज्ञान का सागर, बाप ये ज्ञान अभी ही देते हैं, सचिव में इस ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती, पीछे शुरू होती है भक्ति। बाप कहते हैं जब मेरी निंदा पूरी होने का समय होता है तब मैं आता हूं। देखो बाबा ने आज कौन सी बात कह दी, कभी बाबा कहते हैं जब कलयुग बहुत घोर हो जाता है तब मैं आता हूं, तो बाबा ने कहा जब मेरी निंदा करने का समय पूरा होता है तब मैं आता हूं। तो बाप कहती जब मेरी निंदा पूरी होने का समय होता है तब मैं आता हूं। आधा कलप उनके काम ही है निंदा करना, आधा कलप भगवान की भी निंदा करते आए, जिनकी भी पूजा करते ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं है। तुम बच्चे बैठ समझाते हो परंतु खुद का भी बाबा से योग नहीं। अब बाबा हर बच्चे को सर्टिफिकेट दे रहे, तुम बच्चे भी बैठ समझाते हो परंतु खुद का बाबा से योग नहीं, तो औरों को क्या समझा सकेंगे। वंश बाबा कहते हैं परंतु योग में बिल्कुल ही नहीं रहते, तो विकर्म भी नाश नहीं होते, धारणा भी नहीं होती है। मुख्य बात है एक बाप को याद करना। जो बच्चे ज्ञानी तो आत्मा के साथ साथ योगी तो आत्मा नहीं बनते, उनमें देह अभिमान का अंश जरूर होगा। ज्ञान ज्यादा होता है बहुत अच्छा सुनाते हैं तो नेचुरली अभिमान आ जाता है कि मेरे जैसा कोई नहीं सुना सकता ना, तो बाबा सर्टिफिकेट दे रहे हैं जो बच्चे ज्ञानी तो आत्मा के साथ साथ योगी नहीं बनते हैं उनमें देह अभिमान का अंश जरूर होता है। योग के बगैर समझाना कोई काम का नहीं, फिर देह अभिमान में आकर किसी न किसी को तंग करते रहेंगे, कुछ न कुछ बात को लेकर कुछ न कुछ टिक टिक करते ही रहेंगे। तो बाबा कहते हैं फिर देह अभिमान में आकर किसी न किसी बात में आकर तंग करते रहेंगे। बच्चे भाषण तो अच्छा करते हैं तो समझते हैं हम तो ज्ञानी तो आत्मा है, कहीं यार मेरे जैसा कोई टीचर हो तो सही, मैं ही सबसे बड़ा सीनियर टीचर हूँ। तो बाबा बता रहे हैं बच्चे भाषण अच्छा करते हैं तो समझते हैं हम ज्ञानी तो आत्मा है। बाप कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा तो हो परंतु योग कम है, योग पर पुरुषार्थ बहुत कम है। बाप कितना समझाते रहते हैं, बच्चे चार्ट रखो, मुख्य है ही योग की बात। बच्चों में ज्ञान के समझाने का शौक तो है, इतना शौक रहता है मैं भी समझाऊं, और इतने होशियार है हर एक बच्चा बहुत अच्छी तरह समझा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों में ज्ञान के समझाने का शौक तो है ही लेकिन योग नहीं है, तो योग बिगर विकर्म विनाश नहीं होंगे, फिर पद क्या पाएंगे। विकर्म विनाश ही नहीं हुए हैं तो बाबा कहते फिर पद क्या पाएंगे। योग में बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं, समझते हैं हम 100% है। कई बच्चे बाबा को चिट्ठी लिखते थे बाबा मैंने तो 24 घंटा योग किया, फिर दूसरा कहेगा बाबा मैंने ना 16 घंटा योग किया, बाबा कहते एक मिनट भी नहीं किया उसको इधर रख लो। तो आज भी बाबा सर्टिफिकेट दे रहे, आज क्या काम, हम समझते हम 100% है परंतु बाबा कहते 2%। चलो फिर भी अच्छा सर्टिफिकेट मिल गया कि 2% है परंतु बाबा कहते 2% है। बाबा खुद बतलाते हैं भोजन खाते समय याद में रहता हूँ फिर भूल जाता हूँ। बाबा कभी भूलते नहीं थे लेकिन बाबा बच्चों के अंदर उमंग लाने के लिए कहते हैं। तो बाबा खुद कहते हैं कि भोजन खाते समय याद में रहता हूँ फिर भूल जाता हूँ, स्नान करता हूँ तो भी बाबा को याद करता हूँ। बाबा कैसे मीठी बात करते थे, बाबा कहते थे देखो शिव बाबा के रथ को स्नान करा रहा हूँ, ये शिव बाबा का रथ है, शिव बाबा के रथ को भोजन करा रहा हूँ। तो बाबा तो हर समय शिव बाबा के रथ को याद करते थे, बाबा को याद करते थे। तो बाबा कहते हैं स्नान करता हूँ तो भी बाबा को याद करता हूँ, भले उनका बच्चा हूँ फिर भी याद भूल जाता। अब बाबा ने क्यों कहा, क्योंकि बच्चे कभी निरुत्साहित न हो जाए। तो बाबा कहते भले उनका बच्चा हूँ फिर भी याद भूल जाती है, समझते हो ये तो नंबर 1 में जाने वाला है, जरूर ज्ञान और योग भी ठीक होगा। अब श्री बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया, सबको पता है कि नंबर वन में जाने वाला है जिसका ज्ञान और योग भी ठीक ही होगा। फिर भी बाबा कहते हैं कि योग में बहुत मेहनत है, ट्रायल करके देखो फिर अनुभव सुनाओ। समझो दर्जी कपड़ा सिलाई करते हैं, बाबा के टाइम पर एक दो दर्जी थे तो बाबा उनको भी बहुत प्यार करते थे, तो बाबा उनको कहते थे समझो कि दर्जी कपड़ा सिलाई करता, अभी तो बहुत है टेलर तो बहुत है, कितने सारे हैं, तो टेलर्स को बाबा याद कर रहे हैं, समझो दर्जी कपड़ा सिलाई करते हैं तो देखना चाहिए कि बाबा की याद में रहता हूँ। बहुत मीठा माशुक है, उनको जितना याद करेंगे तो हमारे विकर्म विनाश होंगे, हम सतो प्रधान बन जाएंगे। अपने को देखो हम कितना समय याद में रहता हूँ, बाबा कहते हर एक अपने को देखे, दूसरे को नहीं देखे कि हम कितना समय याद में रहता हूँ। बाबा को रिजल्ट बताने चाहिए, याद में रहने से ही कल्याण होगा, बाकी जास्ती समझाने से कल्याण नहीं होगा। अब समझाने की भी लिमिट होती है, टाइम होता है, दुनिया में भी क्या होता है इतना टाइम लिमिट है तो बुद्धि में बैठता है, अगर ओवर टाइम कर देते हैं कितना भी समझाते हैं तो बाहर चला जाता, बैठता नहीं है। जैसे मटके में जितना पानी आएगा उतना ही भरेगा, उससे ज्यादा डालते जाएंगे बाहर निकलता जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते जास्ती समझाने में बुद्धि में नहीं बैठेगा, तो बाबा कहते जास्ती समझाने से कल्याण नहीं होगा, समझते कुछ भी नहीं है, अलग बिगड़ काम कैसे चलेगा। जब तक बाबा का परिचय नहीं दिया तो क्या समझेगा, अलफ बिगड़ काम कैसे चलेगा, एक अलफ का ही पता नहीं तो बाकी बिंदी बिंदी हो जाती है। अब उनको बताओ बाबा बिंदी है तो बिंदी सुन के कहेगा अच्छा ठीक है, बाबा कहते अलफ का ज्ञान नहीं है तो क्या समझेगा, तो बाकी बिंदी बिंदी हो जाती है। अलफ के साथ बिंदी देने से फायदा होता है, योग नहीं है तो सारा दिन टाइम वेस्ट करते हैं। बाप को तो तरस पड़ता है, बाबा कहते हैं योग नहीं तो सारा दिन टाइम वेस्ट करते रहते, बाप को तो तरस पड़ता है ये क्या कर पाएंगे, योग ही नहीं करते बाबा को याद नहीं करते तो बाबा को लगता है ये क्या कर पाएंगे, तकदीर में नहीं है तो बाप भी क्या करे। बाबा दोनों बातें कहते, एक तरफ बाबा को तरस पड़ता है, दूसरी तरफ उनकी तकदीर में नहीं है तो बाबा कुछ भी नहीं कर सकते, तकदीर में नहीं तो बाप भी क्या करे। बाप तो घड़ी घड़ी समझाते हैं दैवी गुण अच्छे रखो, बाप की याद में रहो, याद बहुत जरूरी है, याद में लव होगा तब ही श्रीमत पर चल सकेंगे। प्रजा तो ढेर बननी है, तुम यहाँ आए ही हो ये लक्ष्मी नारायण बनने, इसमें मेहनत है, भू स्वर्ग में जाएंगे परंतु सजाए खाकर फिर पिछाड़ी में आकर पद पाएंगे थोड़ा सा। उस दिन भी बाबा बता रहे थे भू स्वर्ग में जाएंगे किसका क्या पद होगा, प्रजा होगा, नौकर होगा, नौकर के आगे चाकर होगा, चाकर के आगे चाकर होगा, तो बाबा कहते भू स्वर्ग में जाएंगे पद होगा थोड़ा सा, भू स्वर्ग में जाएंगे परंतु सजाए खाकर फिर पिछाड़ी में आकर पद पाएंगे थोड़ा सा। बाबा तो सब बच्चों को जानते हैं ना, जो बच्चे योग में कच्चे हैं वह देह अभिमान में आकर क्या क्या करते हो बाबा बताए, जो बच्चे योग में कच्चे हैं वह देह अभिमान में आकर रूसते हैं और लड़ते झगड़ते रहे। तो ये निशानी बाबा बता रहे, छोटी छोटी बात पे रूस जाना, लड़ाई झगड़ा करना, तो कारण है देह अभिमान। जो बच्चे योग में कच्चे हैं वह देह अभिमान में आकर रूसते और लड़ते झगड़ते रहेंगे, जो पक्के योगी हैं उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार होगी, वो बहुत थोड़ा बोलेंगे। कभी ना कोई बात को बताना होता है इतना लंबा बताते इतना लंबा बताते, लेकिन उसका सार क्या पता ही नहीं रहता। बाबा कहते एक ही लाइन में बता दो ना क्या कहना चाहते हो, पता नहीं कहाँ गोल 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 करते रहेंगे। तो बाबा कहते जो रॉयल होंगे उनके बहुत थोड़े बोलेंगे, थोड़े शब्दों में सार होगा, बहुत थोड़ा बोलेंगे। यज्ञ सर्विस में भी रुचि रखेंगे, यज्ञ सर्विस में हड्डियां भी चली जाएं। ऐसे ऐसे कोई है भी, ऐसे भी बाबा के रतन थे, यज्ञ सेवा में सब कुछ, हड्डी हड्डी सेवा में समर्पण कर दी। परंतु बाबा कहते हैं याद में जास्ती रहो तो बाप से लव होगा और खुशी में रहेंगे। याद में रहने से क्या फायदा होगा, चलन रॉयल होगी, दैवी गुण धारण होंगे, बाप से लव होगा और खुशी में रहेंगे। बाप कहते हैं मैं भारत खंड में ही आता हूं, बाबा ने पक्का कर दिया। क्यों, भारत अविनाशी खंड, दूसरे खंड में बाबा नहीं आते हैं, तो बाबा पक्का करते हैं कि मैं भारत खंड में ही आता हूं, भारत को ही आकर ऊंचा उठाता हूं। सतयुग में तुम विश्व के मालिक थे, सदगति में थे, फिर दुर्गति किसने की, बाबा कहते मैंने सदगति दिया, विश्व का मालिक बनाया, फिर दुर्गति किसने की, किसी ने कहा रावण ने, तो बाबा ने कहा कब शुरू हुआ, बाबा भी प्रश्न पूछते थे बच्चों से, किसी ने जवाब दिया रावण ने, कब शुरू हुई, फिर किसी ने कहा द्वापर से, आधा कल्प के लिए सदगति एक सेकंड में पाते हो, 21 चरणों का वर्षा पा लेते हो। तो जब भी कोई अच्छा आदमी आए तो पहले पहले उनको बाप का परिचय दो, बाबा हमेशा पक्का कराते। कभी कभी बाबा कहते थे देखता हूँ कि समझाने वाला ऐसा है तो मैं खुद प्रवेश होकर के उसको समझाता हूँ। तो बाबा कहते हैं जब भी कोई अच्छा आदमी आए तो पहले पहले उनको बाप का परिचय दो। बाप कहते हैं बच्चे इस ज्ञान से ही तुम्हारी सदगति होगी। तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा चल रहा है सेकेंड बाय सेकेंड, ये बुद्धि में ही याद रहे तो तुम्हारी स्थिति बहुत स्थिर रहे। ड्रामा की पॉइंट भी याद हो जाए तो बाबा कहते स्थिति कैसी होगी, बहुत स्थिर होगी। ये बुद्धि में याद रहे तो भी तुम अच्छी रीति स्थिर रहेंगे, यहाँ बैठे भी हो तो बुद्धि में रहे ये सृष्टि चक्र जो कि माफिक कैसे फिरता रहता है, सेकंड बाय सेकंड टिक टिक होती रहती है, ड्रामा अनुसार ही सारा पार्ट बज रहा है। एक सेकंड पास हुआ खत्म, एक सेकंड पूरा हुआ तो वो सीन खत्म हुआ, एक सेकंड पास हुआ खत्म, रोल होता जाता है बहुत आहिस्ते आहिस्ते। फिर हर एक आत्मा का जो पार्ट है कितना रॉयल्टी से धीरे धीरे चलता है, तो बाबा कहते बहुत आहिस्ते आहिस्ते फिरता है। ये है बेहद का ड्रामा, बूढ़े आदि जो हैं उनकी बुद्धि में ये बातें बैठ न सके। बाबा के टाइम पर बूढ़े गांव के आते थे ना, तो गांव की बूढ़ी माताएं आती थी, उनको भाषा भी नहीं आती थी, वो अपनी भाषा में खुशी में नाचते रहते थे। बाबा के टाइम पर आती थी बूढ़ी बूढ़ी माताएं आती थी, बाबा को चारों तरफ घेर लेती थी और खुशी में बस बाबा मिला खुशी, बाकी ज्ञान क्या बुद्धि में नहीं बैठता था। बूढ़े लोग हैं गांव में करते, किसान हैं, पढ़े नहीं, अभी तो बूढ़े सब समझते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, हर बात को समझते हैं। बाबा के टाइम पर तो ऐसा था ना, तो बाबा कहते थे उनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठेगा, लेकिन उनकी बुद्धि में बाबा का जो प्यार बैठता था वो सबसे ज्यादा अनुभव था। तो बाबा कहते हैं बूढ़े आदि जो हैं उनकी बुद्धि में ये बातें तो बैठ न सके, ज्ञान भी बैठ न सके, योग भी नहीं, फिर भी बच्चे तो है ना। बाबा के पास जब बुजुर्ग आते थे ना, बाबा उनको बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। बाबा कहते इन्होंने कितने धक्के खाए हैं, अभी आखिर इनको बाबा मिला, बाप मिला है, तो बाबा बहुत प्यार करते थे, भल ज्ञान नहीं है, है तो बाबा के बच्चे ना, ज्ञान है, ज्ञान बुद्धि में इतना गहराई की बात है नहीं, लेकिन ज्ञान पक्का ये होता था मैं आत्मा, बाबा मेरा बाप है, तो उसी में तो सारा राज है, उसी में सारी प्राप्ति है। तो बाबा कहते हैं बूढ़े आदि जो है उनकी बुद्धि में ये बातें बैठ न सके, ज्ञान भी बैठ न सके, योग भी नहीं है, फिर भी तो बच्चे हैं ना। हाँ, सर्विस करने वालों का पद ऊंच है, बाकी का पद कम होगा, ये पक्का ख्याल रखो। ये बेहद का ड्रामा है, चक्र फिरता रहता है, जैसे रिकॉर्ड फिरता रहता है ना, बाबा के टाइम पर रिकॉर्ड होते थे, उस समय गोल गोल इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड होते थे, ग्रामोफोन होता था और उसके ऊपर सुई लगाते थे और पहले तो उसको भरते थे ऐसे करके, उसको चला के पावर भर लेते थे, फिर सुई लगाते थे, धीरे धीरे रिकॉर्ड बजता रहता था। तो बाबा कहते हैं जैसे रिकॉर्ड फिरता रहता है ना, हमारी आत्मा में भी ऐसे रिकॉर्ड भरा हुआ है, छोटी सी आत्मा में इतना सारा पार्ट भरा हुआ है, इसको कुदरत कहा जाता है। देखने में तो कुछ भी नहीं आता, आत्मा इतनी छोटी, इतना बड़ा पार्ट है, बाबा कहते देखने में तो कुछ नहीं आता, ये तो समझ की बातें हैं, मोटी बुद्धि वाले तो समझ ना सके। इसमें हम जो बोलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है, फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा, ऐसा कोई ऐसी समझ कोई के पास है, कौन सी कि 5000 वर्ष का पार्ट है, चक्कर है, आत्मा में पार्ट भरा हुआ है, जो जो होता जाता फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। तो बाबा कहते हैं ऐसी समझ कोई के पास है नहीं, जो महारथी होंगे वे घड़ी घड़ी इन बातों पर ध्यान देकर समझाते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं पहले पहले तो गांठ बांधो कि बाप की याद के। अब बाबा क्यों कहते गांठ बांधो, पहले जमाने में क्या होता था कि कोई भी बात को याद रखना होता था ना, माताएं क्या करती थी, अपने चुन्नी के पल्ले पे गांठ बांध देते, भाई रूमाल पे गांठ बांध देते, तो गांठ बांधना मीन्स कोई बात है पक्का करने के। तो बाबा भी आज क्या कह रहे हैं, जो महारथी होंगे वे घड़ी घड़ी इन बातों पर ध्यान देकर समझाते होंगे। इसलिए बाबा कहते पहले पहले तो ये गांठ बांधो, बाप को याद की। बाप कहते हैं मुझे याद करो, आत्मा को अब घर जाना है, दिल के सब संबंध छोड़ देने हैं, जितना हो सके बाबा को याद करते रहो, ये पुरुषार्थ है गुप्त। बाबा राय देते हैं परिचय का भी दो, बाबा कहते बाप का परिचय भी दो, याद कम करते हैं तो परिचय भी कम देते। अब रिजल्ट, बाबा को याद कम किया तो बाप का परिचय भी कम ही देंगे, याद कम करते हैं तो परिचय भी कम देते हैं। पहले तो बाप का परिचय बुद्धि में बिठाओ, जब तक वो नहीं बिठाया तो क्या होगा, बोलो अब लिखो दरों पर ये हमारा बाप है, पहले समझाओ फिर उसे लिखाओ, बोलो अब लिखो बरोबर ये हमारा बाप है, दिल सहित सब कुछ छोड़ एक बाप को याद करना है, याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, मुक्ति जीवन मुक्ति में दुख दर्द तो होता ही नहीं, ना मुक्ति में ना जीवन मुक्ति में। दिन प्रतिदिन अच्छी बातें समझाई जाती, आपस में भी यही बातें करो, लायक भी बनना चाहिए, ब्राह्मण होकर और बाप की रूहानी सेवा ना करे तो क्या काम के, बने बाबा के बच्चे और बाबा की सेवा ना करे तो बाबा कहते क्या काम के। पढ़ाई को अच्छी धारण करना चाहिए, बाबा जानते हैं बहुत हैं जिनको एक अक्षर भी धारण नहीं होता, अब बाबा के टाइम बाबा को कहना पड़ता है, लेकिन ऐसे अभी नहीं है, अभी तो सब धारण कर ही रहे हैं। बाबा जानते हैं बहुत जिनको एक अक्षर भी धारण नहीं होता है, यथार्थ रीति बाप को याद नहीं करते हैं, राजा रानी का पद पाने में मेहनत है, जो मेहनत करेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। मेहनत करें तब तो राजाई में जा सकते हैं। नंबर वन को ही स्कॉलरशिप मिलती है। ये लक्ष्मी नारायण स्कॉलरशिप लिए हुए हैं। फिर है नंबर वन। आज बाबा ने स्कॉलरशिप की भी तीन कैटेगरी बताई। पहली है, बहुत बड़ा इम्तिहान है ना, स्कॉलरशिप की ही माला बनी हुई है। पहली है आठ रत्न की, द टॉप वन है आठ रत्न की। फिर है 100 की, फिर है 16,000। आठ तो कहा टॉप पर, 100 भी फिर भी ठीक है, 16,000 तो बहुत पीछे जाता है ना। फिर है 16,000, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए माला में पिरोने के लिए। अंतर्मुखी रहने से, अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करने से ही स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन जाएंगे। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहे, तो बाबा ने क्या कहा, बहुत अंतर्मुखी रहना है। बाप तो है ही कल्याणकारी, तो कल्याण के लिए ही राय देते हैं, क्यों अंतर्मुखी रहना है, इसमें ही कल्याण है। तो बाबा कहते कल्याण के लिए राय देते हैं, कल्याण तो सारी दुनिया का होना है, परंतु नंबर वन है। तुम यहाँ बाप के पास पढ़ने के लिए आए हो, तुम्हारे में भी वे स्टूडेंट अच्छे हैं जो पढ़ाई पर अच्छा ध्यान देते हैं, कोई तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे भी हैं, बाबा फिर बताए, ऐसे भी हैं, क्या कहते क्यों पढ़े क्या करें, जो भाग्य में मिल जाएगा। तो बाबा कहते ऐसे भी हैं, उसको बाबा कहते थे देखो क्या बुद्धि हो गई है। ऐसे भी बहुत समझते हैं जो भाग्य में होगा, पढ़ाई की एम ही नहीं है, पढ़ने का उनको है ही नहीं लक्ष्य। फिर कहेंगे जो मिलेगा सो मिलेगा, और मिल तो जाएगा, जरा कम मिलेगा फिर कहेंगे क्यों कम मिला। ऐसे भी होता है ना, तो लेने में पूरा चाहिए, मेहनत में कम चाहिए। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी वो समझते हैं जो भाग्य में होगा, पढ़ाई की एम ही नहीं है, तो बच्चों को तो याद का चार्ट रखना है। हमको अब वापिस घर जाना है, ज्ञान तो यहाँ ही छोड़ जाएंगे, जो भी ज्ञान लिया आत्मा अंदर ले जाएगी, लेकिन साथ तो नहीं ले जाएंगे ना ज्ञान की किताबें। तो बाबा कहते ज्ञान तो यहाँ ही छोड़ जाएंगे, ज्ञान का पार्ट पूरा हो जाता है। आत्मा इतनी छोटी, उसमें कितना बड़ा पार्ट है, वंडर है ना, ये सारा अविनाशी ड्रामा है। बाबा कहते आत्मा इतनी छोटी है, पार्ट कितना बड़ा है, ये सारा अविनाशी ड्रामा है। ऐसे ऐसे भी तुम अंतर्मुखी हो, अपने से बातें करते हो। अंतर्मुखी में क्या क्या करते, पहले बाबा ने कहा बहुत थोड़ा बोलेंगे, रॉय चलन होगी, बाबा को याद में रहेंगे, खुशी में रहेंगे, तो अंतर्मुखी और बताया। ऐसे ऐसे तुम अंतर्मुखी हो, अपने से बातें करते रहो, तो तुमको बहुत खुशी होगी कि बाप आकर ऐसी बातें सुनाते हैं। अंतर्मुखियों के ड्रामा की बात को भी मनन करो कि बाप आकर ऐसी बातें सुनाते हैं कि आत्मा कब विनाश नहीं होगी। ड्रामा में एक एक मनुष्य का, एक एक चीज का पार्ट नूंदा हुआ। ड्रामा की बात को पक्का कर रहे हैं, ड्रामा में एक एक मनुष्य का, एक एक चीज का पार्ट नूंदा हुआ है। इसको बेअंत भी नहीं कहेंगे, क्योंकि ड्रामा का पार्ट चलता ही रहता है ना, इसका बेअंत नहीं कहेंगे, इसका अंत होता ही नहीं है। अंत कह इसको बेअंत भी नहीं कहेंगे, अंत तो पाया है ना, बाबा को दुनिया कहते हैं ना बेअंत है, इसका अंत नहीं पा सकते, ड्रामा ऐसे कोई जान नहीं सकता। बाबा कहते बाबा ने तो इसका परिचय दे दिया ना कि ड्रामा 5,000 वर्ष का है, इसमें हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। तो बाबा कहते हैं इनको बेअंत भी नहीं कहेंगे, अंत तो पाया है ना, परंतु ये है अनादि। अंत में उसका राज रहस्य क्या उपा लिया है और क्या है ये ड्रामा है अनादि, कितनी चीजें हैं इसको कुदरत कहेंगे। ईश्वर की कुदरत नहीं कह सकते कि ईश्वर की, लोग तो कहते हैं ना भक्ति में ईश्वर की कुदरत है, तो बाबा कहते हैं इसको कुदरत जरूर कहेंगे लेकिन ईश्वर की कुदरत नहीं कह सकते। वह कहते हैं हमारा भी इसमें पार्ट है। अब बाबा खुद बोल रहे मेरा भी पार्ट है तो मेरी कुदरत क्या है, मैं भी तो पार्ट बजाने आता हूँ। इनको कुदरत कहें ईश्वर की कुदरत भी नहीं कह सकते। वह कहते हैं हमारा भी इसमें पार्ट है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर से बता रहे हैं मुरली पूरा होने के बाद सबको यहाँ बैठना है क्योंकि आज के सारे डायरेक्शंस अभी ही दिए जाएंगे, कोई भी मिस नहीं करेंगे, इसलिए मुरली भी थोड़ा जल्दी पूरा किया। तो सबको यहाँ बैठना, किसी को जाना नहीं है। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है योग में बहुत मेहनत है, ट्रायल करके देखना है कि कर्म में कितना समय बाप की याद रहती है। याद में रहने में ही कल्याण है। मीठे माशु को बहुत प्यार से याद करना है, याद का चार्ट रखना है। कितनी मेहनत बिताई, योग में बहुत मेहनत है। दूसरा ट्रायल करके देखना है कि कर्म में कितना समय बाप की याद रहती है। चौथा है याद में रहने से ही कल्याण है। पांचवा मीठे माशु को बहुत प्यार से याद करना है। छठा याद का चार्ट रखना है। दूसरा मन बुद्धि से इस ड्रामा के राज को समझना है। ये बहुत बहुत कल्याणकारी ड्रामा है। हम जो बोलते हैं वह करते हैं वह फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। इसे यथार्थ समय खुशी में रहना है। आज का वरदान अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव स्वयं को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रूफ है आपके श्रेष्ठ पवित्र जीवन। सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात प्रवृत्ति में रहते हुए पर वृत्ति में रहना, देही और देही की दुनिया के संबंधों से पर अर्थात न्यारा रहना, पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए भी ना देखना, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना, यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने व माया पूर्व बनने का सहज साधन है। स्लोगन अटेंशन रूपी पहल दर ठीक है तो अति मेरे सुख का खजाना खो नहीं सकता। अटेंशन रूपी पहलदार ठीक है तो अति मेरे सुख का खजाना खो नहीं सकता। अब तीसरा और जो कम टॉपिक चल रहा है कंबाइंड रूप की समिति से सदा विजयी बना। बाप को कंपेनियन तो बनाया है, अब उसे कंबाइंड रूप में अनुभव करो और इस अनुभव को बार बार समिति में लाते लाते समिति स्वरूप बन जाओ। बार बार चेक करो कि कंबाइंड रूप किनारा तो नहीं कर लिया है। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे उतना बहुमूल्य जीवन बहुत प्यारे मनोरंजक अनुभव होंगे। उतना धर्म जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक अनुभव होगी और शांति। सभी भाई बहन बैठे हुए हैं, कोई उठे हुए नहीं। जैसा कि आपको बताया, आज सुबह प्रातः 8 बजे दादाजी के भौतिक शरीर को शांतिवन से ले जाएंगे और सीधा जाएंगे ज्ञान सोल। ज्ञान सोल में वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और वहां से वे ग्लोबल हॉस्पिटल और उसके बाद 10 बजे तक यहां पर उनके पार्थिव शरीर को पांडव भवन में लाया जाएगा। जैसे उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा उस समय सभी भाई बहनें लाइन में खड़े रहेंगे और कोई भी इधर उधर आवाज नहीं करेगा, बिल्कुल साइलेंस में खड़ा होना है। फिर उनके पार्थिव शरीर को निश्चय हॉल में रखा जाएगा, क्योंकि हर एक भाई या बहन को यह मौका मिलेगा श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और जब निश्चय हॉल में रखेंगे उस समय कुछ गाइड भाई रहेंगे जो आपको बताएंगे किस रास्ते से हॉल के अंदर प्रवेश करना है और वहां को श्रद्धांजलि अर्पित करके फिर आप बाहर आएंगे। फिर उसके बाद जब सभी भाई बहने अपनी श्रद्धांजलि वहां पर हिस्ट्री हॉल में अर्पित कर लेंगे, तब शांति स्तंभ पर किसी को भी फूल नहीं चढ़ा रहे। वहां पर हमें शांति का वातावरण बनाए रखना है। शांति स्तंभ पर सभी श्रद्धांजलि फूल अर्पण करना जो भी है हिस्ट्री हॉल में रहेगा। फिर उसके बाद शांति स्तंभ पर उन्हें लाया जाएगा, शांति स्तंभ पर बाबा की याद में। फिर वहां से बाबा के कमरे के पास ले जाएंगे, बाबा के कमरे के बाद बाबा की झोपड़ी में, उसके बाद यहाँ ओम शांति भवन पर ले आएंगे। और ओम शांति भवन के बाहर हम देख रहे हैं कि काफी सारी गाड़ियां खड़ी हैं। वो गाड़ियां 10 बजे से पहले तो क्या 9 बजे से वहां उठा दें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे भाई बहने आएंगे और एम्बुलेंस भी ऊपर आएगी, तो इस बात का ध्यान रखना, तो गाड़ियां भी हटा देंगे। और दूसरी बात है कि सबको आज नाश्ता 9:15 बजे के अंदर कर लेना है, लेटेस्ट 9:30, लेकिन 9:15 बजे तक नाश्ता कर लेना। और जो भी भाई बहने पुष्प अर्पण करेंगे, जैसा कि ब्राह्मणों का नियम है कि सबको जाकर के अच्छी तरह से स्नान करना है, वस्त्र चेंज करने हैं, जो नियम है उसका पूरा पालन करना है। रवि भाई कुछ बोलना, और भी कुछ डायरेक्शन हैं जो हम रवि भाई को बता रहे हैं। और फिर दूसरी बात बता दें, यहाँ पांडव वन से म्यूजियम में ले जाएंगे, म्यूजियम के बाद फिर शांतिवन में लेकर के जाएंगे। शांतिवन में भी कई स्थानों पर उनको लेकर जाना है। और शांतिवन में जाएंगे फिर मनोमनी कॉम्प्लेक्स, आनंद सरोवर, शांतिवन की परिक्रमा करते हुए तपस्या ध्यान और तीनों दादों के स्तंभ होते हुए 2 बजे तक फिर कॉन्फ्रेंस हॉल में ले जाएंगे। वहां पर भी सभी भाई बहने जो नए आ रहे हैं जिन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित नहीं किए वो करेंगे। कल गुरुवार भी है, कल प्रातः 9 बजे अंतिम संस्कार के लिए प्रस्थान करेंगे। अंतिम संस्कार सरस्वती भवन के सामने वाले गार्डन में होगा। और सुबह कल का भी बताए, वो सुबह 11 बजे सुबह डाइनिंग हॉल में बैठेंगे और 11 से 12 दादी जी के साथ के शेष मनु सुनाए जाएंगे। 12 बजे बाबा और दादी जी को भोग स्वीकार कराया जाएगा और बाबा का संदेश सुनाएंगे।
वैसे तो विस्तार से आदरणीय बहन जी ने आपको सब प्रोग्राम बता ही दिया है, लेकिन विशेष पांडव भवन के लिए कुछ आप सभी का ध्यान खिंचवा रहे हैं। अभी जैसे 8 बजे बोला गया था और अभी माउंट आबू के लिए पार्थिव देह को लेकर निकलने की तैयारी में निकलेंगे, जो सबसे पहले तो ज्ञान सरोवर और ग्लोबल हॉस्पिटल होते हुए पांडव भवन में आएंगे। और पांडव भवन में हिस्ट्री हॉल में सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए आना है। शांति स्तंभ पर जब लाएंगे तब केवल बड़े लोग वहां पर होंगे, तब कोई भी श्रद्धांजलि नहीं डाल सकते। लेकिन जब पहले हिस्ट्री हॉल में लगभग 1 घंटे तक आराम से रखेंगे और सभी को लाइन से शांति स्तंभ की तरफ, जो हिस्ट्री हॉल का गेट है उस तरफ से आपको हिस्ट्री हॉल में एंटर करना है। और जो भी वहां पर हमारे व्यवस्था बनाने के लिए कुछ भाई रहेंगे, वो जैसी व्यवस्था बनाएंगे, जैसे हम सभी को बताएंगे, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हमें आगे आगे जाने की होड़ न करते हुए, जैसे बहन जी ने भी बताया, क्योंकि दादी रतन मौनी जी पांडव भवन में बहुत वर्षों तक रहे और दादी जी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी रहे इस कैंपस के विशेष करके, और हमारा
यूनिवर्सिटी हॉल में कहेंगे वो सारा कार्यक्रम लाइव होगा, इसलिए कोई भी दो दो चार चार इकट्ठे नहीं रहे, सारा कार्यक्रम लाइव होगा। इससे सबको बहुत शांति से अवृत से जो भी बाहर आकर के खड़े रहेंगे उनका लाइव नहीं है, हिस्ट्री हॉल के अंदर सारा ही कार्यक्रम लाइव है, ये आपके ध्यान पड़े हैं।
हम सभी जानते हैं कि जब थोड़ी लाइन लगती है तो हर एक को लगता है हम आगे जाएं, लेकिन भागदौड़ करें या थोड़ा शांति मन में रख के चले, पांच मिनट का फर्क पड़ता है, दो चार मिनट का फर्क पड़ता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है, बल्कि अपनी स्थिति खराब होती है। इसीलिए सभी जानते हैं और हम विशेष निवेदन कर रहे हैं, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से योग युक्त मन में दादी जी के प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना, कृतज्ञता की भावना रखते हुए हम श्रद्धांजलि डालें, जो बाबा तक दादी तक हमारी श्रद्धांजलि पहुंचे, क्योंकि जो भागदौड़ में लगता है उसका तो मन आप जानते हैं कैसा रहता है। तो इसीलिए बहुत ही एक मिसाल बनकर के शांतिपूर्ण तरीके से हमें ये कार्यक्रम आज का करना है, ये सभी के
बाद जैसे कि बताया कि हम शांति भवन के बाहर जो भी जिनकी पर्सनल गाड़ियां हैं दो तीन घंटे के लिए वहां से उठा देंगे, क्योंकि जब यहां सब आते हैं तो बीच में गाड़ी होने के कारण थोड़ी बाधा पड़ती है, इसलिए इस बात का भी ध्यान है। 9 बजे के अंदर हम शांति भवन के बाहर जो चल रही है वहां पर गाड़ी है उसको दो तीन घंटे के लिए वहां से उठा दें। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे, याद में बैठे हुए अपने प्यारे दादी जी को श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हुए मन के भाव में उनकी सेवाओं का रिटर्न तो क्या दे सकते हैं, केवल अपने मन से ही प्यार की भावना ही प्रकट कर सकते हैं। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति।